الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، استجند نوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل بادشاہ ہے، یعنی جس نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کیا. دوسرا شخص وہ ہے جس نے جوانی میں عبادت کی، اور جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں بڑی مقبول، کہ جوانی میں انسان کے اندر بہت سارے نشے آ جاتے ہیں، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ایمبیشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جوانی کے اندر انسان بہت سارے مختلف شوقوں میں لگ جاتا ہے، اور ان مختلف شوق میں سے اگر اس نے عبادت کو اپنا شوق بنایا تو واقعی اس نے بڑا کمال. عبادت سے متعلق ہم نے پچھلے چند دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے، میں عرض کیا کہ عبادت سے متعلق 5 باتیں قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے، اور اس میں سے 3 باتیں ہم کر چکے ہیں پچھلی 3 مجالس میں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت جو ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے عبادت سے متعلق دوسری بات، کہ اللہ نے عبادت میں ہی کامیابی رکھی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور عبادت سے متعلق تیسری بات جو ہم نے پچھلی مجالس میں بیان کی وہ یہ کہ عبادت ہی سے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن. تو عبادت سے متعلق یہ 3 چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی اس مجلس میں عبادت سے متعلق چوتھی بات، اور وہ یہ کہ جو عبادت گزار ہوگا وہی متقی ہوگا، جو عبادت کرے گا وہی گناہوں سے پرہیز کرے گا. قرآن پاک کی آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو عبادت کرے گا وہی گناہوں سے پرہیز کرے گا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص عبادت میں تو غفلت کر رہا ہے، बहुत ही मिनिमम इबादत कर रहा है और गुनाहों से जबरदस्त परहेज कर रहा है, ये उसूल के खिलाफ है। जो गुनाहों से जबरदस्त परहेज कर रहा है वो इबादत भी जबरदस्त कर रहा है, ये उसूल है। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, मसलुल लजी यज़कुरु रब्बहु वल्लजी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्यि वल मय्यति। मिसाल उस शख्स की जो अल्लाह को याद करता है वो जिंदा की है, और उस शख्स की जो अल्लाह को याद नहीं करता ये मुर्दा की मिसाल है। और इससे मुराद जाहिरी जिंदगी और जाहिरी मौत नहीं है बल्कि बातनी जिंदगी, यानी जो अल्लाह को याद कर रहा है वो बातनी तौर पे जिंदा, जो अल्लाह को याद नहीं कर रहा है वो बातनी तौर पे मुर्दा है। और बातनी मुर्दा होने का मतलब ये को जमीन पे लेटा हुआ मरा हुआ थोड़ी है, बातनी मौत का मतलब है कि गुनाहों पे जुर्रत कर रहा है। तो ये पक्की बात है, ये उसूल है कि इबादत ही के जरिए से तकवा हासिल होता है। तो जो इबादत कर रहा है वही गुनाहों से बच रहा, वही बातनी तौर पे जिंदा है, वरना बातनी मौत है। नबी अलैहि सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया, जिक्रुल्लाही शिफाउल कुलूब, ये जो अल्लाह का जिक्र है ना ये दिलों की शिफा है। सो मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो इसके दिल के अंदर गुनाह का शौक खत्म हो जाता है। मशायख ने एक और भी इसका मतलब बयान किया कि जिक्र करने वाला जो है वो आसमान से उतरने वाले फैज को जज्ब करता है, नूर को जज्ब करता है। जैसे ही वो अल्लाह को याद करता है आसमान से एक नूर उसके दिल में उतरता है। इसलिए जो अल्लाह को याद करता है उसकी सोच उस याद के साथ ही अलग हो जाती है। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं जी नमाज से पहले एक ही चीज के बारे में कुछ और सोच रहा था, नमाज पढ़ने के बाद उसी चीज के बारे में किसी और तरह से सोच रहा। ये कैसे होता है कि इंसान गुस्से में है और बैठ के नमाज पढ़ता है या वजू करता है तो गुस्सा उतर जाता है, कुछ और हो जाता है। ये दिल के ऊपर कोई चीज उतरती है कि जिससे दिल बदलता है। तो ये पक्की बात है, जिसने अल्लाह का जिक्र किया उसके दिल को शिफा मिलती है। जिसने जिक्र किया उसी ने तकवे वाली जिंदगी गुजारी, ये उसूल है कि कोई शख्स अगर जिक्र नहीं कर रहा तो गुनाहों से परहेज नहीं कर रहा। हम में से हर एक ऐसे बंदे को जरूर जानता होगा जो गफलत वाली गुनाह वाली जिंदगी गुजारता, किसी न किसी शेप और फॉर्म में जिक्र करना शुरू किया, वही शख्स जो है वो अब कहता जी मैंने ये गुनाह नहीं करना और वो गुनाह नहीं करना, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा। क्या वजह बनी? अल्लाह को याद किया तो दिल को शिफा मिल गई। तो कुछ मशायख के नजदीक जिक्र का सबसे बड़ा फायदा ये दिल की शिफा है। किताबों में वाक्य लिखा है कि एक बादशाह था, उसने एक बड़ी मस्जिद बनाई। बादशाह भी नेक था, औलाद भी नेक था, ठीक। जिस जब मस्जिद बन गई तो बादशाह की बेटी ने कहा कि जी मस्जिद बनने वाली है, अब तकरीबन मुकम्मल है। तो वालिद से कहा कि जी मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहली हूं जो इस मस्जिद में जिसने नमाज पढ़ी। तो अगर आप मुझे आज थोड़ा सा मौका दे दें, इसके बाद तो फिर मर्द आ जाएंगे मस्जिद में, औरतें तो होंगी नहीं। तो ये है कि मैं इबादत करके आ जाऊं। वालिद जो थे बादशाह बड़े खुश हुए, जी देखो बेटी मेरी, उसका शौक क्या है। तो उसने मस्जिद पैगाम भिजवाया कि जितने भी काम करने वाले हैं वो मस्जिद खाली कर लें थोड़ी देर के लिए, बेटी मेरी आएगी शहजादी जो है वो थोड़ी देर नफले इबादतें करेगी और फिर चली जाएगी। वहां जो भी सुपरवाइजर जो भी था जो काम को देख रहा था, उसने ऐलान किया कि जितने भी काम करने वाले हैं वो सारे मस्जिद खाली कर लें। और क्योंकि उस जमाने में मशीनरी कम होती थी तो बहुत लोग होते थे, तो सारे लोग मस्जिद खाली करके बाहर निकल आए कि जी शहजादी आएगी वो थोड़ी देर इबादत मस्जिद में करेगी और फिर जो है वो चली जाएगी, तो जो आखिरी काम थोड़ा बहुत रह गया है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा मस्जिद का। सारे लोग मस्जिद से बाहर निकल गए, शहजादी आ गई, उसने आके नवाफिल पढ़ना शुरू किए। जैसे नवाफिल पढ़ना शुरू किए तो एक काम करने वाला नौजवान जो था वो अभी बाहर नहीं निकल रहा था, वो निकल रहा था, इन्हें अभी बाहर निकला नहीं था, तो वो निकलना शुरू हुआ तो उसकी नजर शहजादी पे पड़ गई। शहजादी नमाज पढ़ रही थी, जब उसने शहजादी को देखा तो उसे शहजादी बहुत ही खूबसूरत लगी और उसको बड़ी उससे मोहब्बत हो गई, और ऐसी शदीद मोहब्बत कि वो बस कोई और चीज सोच नहीं पा रहा है। मस्जिद से बाहर आया तो ना किसी से बात कर रहा है ना कुछ, बस उसके दिमाग में यही ख्याल है, सिर्फ बहुत ही गहरी मोहब्बत। हत्ता के शहजादी नमाज अदा करके नवाफिल पढ़ के दुआएं करके और वापस चली गई अपने महल, मगर इसका ख्याल शहजादी की तरफ ही रहा, ना इससे काम हो रहा है ना इससे कोई बात हो रही है। तो उस दिन काम भी नहीं किया, घर चले गया, अगले दिन भी काम पे नहीं आया, न खा रहा है न पी रहा है न काम पे जा रहा है, पूरा दिन यूं ही घर पे बैठा हुआ है। पूरा दिन जब गुजर गया तो वालदा ने कहा कि बेटा तू जा नहीं रहा है काम पे, क्या हुआ है तुझे, खा भी नहीं रहा है पूरा दिन। उसने कहा मस्जिद में बादशाह की बेटी आई थी शहजादी, उसने नवाफिल अदा किए, मैंने उसको देख लिया, अब मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बीवी बन जाए। माँ ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू मस्जिद में काम करने वाला मजदूर है, वो बादशाह की बेटी है, तेरा उसको कोई शादी हो सकती है, पागलों वाली बातें करता है। जैसे माए डांटती है, उसने कहा कि अगर मेरी शादी उससे नहीं हो सकती तो फिर मैंने इस दुनिया में रहना भी नहीं है, तो मोहब्बत की इंतहा हो गई है। माँ ने सोचा कि जी एक दो दिन और नहीं खाएगा ना तो सीधा हो जाएगा, वैसे ही वो तो नहीं मिलनी है, जाहिर है किसी हालत में रहेगा तो एक दो दिन बाद खाना शुरू कर ही देगा, जाहिर है। अब एक दो दिन गुजर गए, फिर इसी तरह से न काम पे जा रहा है ना कुछ खा पी रहा है, आखिर को मात ही तो उसको फिक्र हुई कि जी ये तो 3-4 दिन से अब इसी हालत में है। तो माँ ने सोचा कि जी मैं इसका रिश्ता लेके बादशाह के पास चले जाती हूँ, बादशाह ने तो मना ही करना है, जाहिर है बादशाह ने थोड़ी कोई अपनी बेटी मजदूर को देनी है, तो बादशाह जब मना कर देगा तो आके इसको कहूंगी कि भाई मैं तेरा रिश्ता लेके गई थी, बादशाह ने मना कर दिया, तो अब तू नॉर्मल जिंदगी गुजार ले। तो उसको बता के गई कि जा रही हूं बादशाह के पास तेरा रिश्ता लेके। बादशाह के पास पहुंची, बादशाह एक आदमी था मगर काफी देर इंतजार किया, और बड़ी मुश्किलों से बादशाह के साथ उसको 1-2 मिनट मिल गया, क्योंकि बूढ़ी औरत आई है जो बात करना चाहती है। बादशाह ने पूछा जी क्या मामला है, ना कि जी मेरा बेटा है मस्जिद में मजदूरी करता है, आपकी बेटी नमाज पढ़ने आई मस्जिद में, उसने आपकी बेटी को देखा और उसको ऐसी मोहब्बत हुई है कि कि ना वो 3 4 दिन से कुछ खा रहा है ना काम कर रहा है, और बस चाहता है कि जी उसकी शादी आपके बेट आपकी बेटी से हो जाए। और फिर कहा कि बादशाह सलामत मुझे तो पता है कि आपकी बेटी से मेरे बेटे का कोई शादी नहीं हो सकती है, मैं तो इसलिए आई हूँ कि आप मना फरमाएं। तो मैं जाके उसको कह दूंगा जी तेरा रिश्ता लेके गई थी तो बादशाह ने मना कर दिया है, तो अब तू अब नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। उस औरत की हैरान की ना रही। तो बादशाह ने आगे से कहा कि देखो बीबी, मुझे अपनी बेटी के लिए कोई बहुत अमीर आदमी नहीं चाहिए, मैं तो अपनी बेटी के लिए एक नेक आदमी ढूंढना चाहता। अगर तेरा ये बेटा, ये जो मस्जिद हमने बनाई है इसमें 40 रातें इबादत कर सकता है ना मुतवातिर, तो मेरी नजर में वो नेक है, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर लूंगा। माँ ने कहा क्या 40 रातें? क्या जो उसका हाल हुआ है वो तो 400 रातें भी करने के लिए तैयार हो सकता है। माँ बड़ी खुशी खुशी वापस गई और जाके बेटे से कहा कि मैंने बादशाह को तेरा रिश्ता डाला और बादशाह ने तेरा रिश्ता कबूल कर लिया है, बस एक छोटी सी शर्त है कि इस मस्जिद में है 40 रातें तूने इबादत करनी है। बेटे ने कहा 40 रातें क्या है, कोई मसला ही कोई नहीं। उसी रात इशा से पहले बिल्कुल तैयार होकर मस्जिद पहुंच गया, इशा की नमाज पढ़ी, काफी देर नवाफिल पढ़ता रहा, तिलावत की, फिर तस्बीहात की, फिर रात का जब आखिरी पहरा है तो फिर नवाफिल पढ़ी, फिर दुआएं की, हत्ता के मौज़िन ने आके फजर की अजान दी, फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ी और उसके बाद वापस घर आया। तो पहली रात पूरी रात इशा से लेके फजर तक इबादत में गुजारी। अगली रात भी इसी तरह से, फिर अगली रात भी इसी तरह से, 5 रातें गुजर गई, 10 रातें गुजर गई, 20 रातें इसी तरह से, 40 रातें इसी तरह से, 60 रातें हो गई, 80 रातें हो गई। यानी शर्त तो 40 रातों की थी, 80 रातें इसी तरह से गुजर गई। 80 रातें गुजर गई तो बादशाह ने पैगाम भेजा कि नौजवान खबर तो मुझे यही मिली कि तू 80 रातों से मुतवातिर आ रहा है, बात तो 40 रातों की हुई थी, तो क्या तूने मेरी बेटी से शादी नहीं करनी? इतना वक्त गुजर गया, नौजवान ने बादशाह को पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत, इस मालिक को बैठ के मस्जिद में याद कर रहा हूं, उससे मोहब्बत इतनी हो गई है कि आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में अब जगह नहीं है, इसलिए उससे शादी करने से माजूर। अल्लाह, तो ये अल्लाह की याद, ये इबादत जो है ये दिल की शिफा है, इस इबादत ही के जरिए से इंसान मुत्तकी बनता है। तो मशायख का कौल ये है कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई इबादत ना करे और तकवा वाली जिंदगी गुजारे। तो इबादत से मुतालिक 5 बातें आपसे बतानी थी, और आज की मजलिस में इस हवाले से ये चौथी बात कि इबादत के जरिए से इंसान को तकवा नसीब होता है। अल्लाह हमें इबादत की भी तौफीक नसीब फरमाए और तकवा भी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاش ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. تصلى الله سيدنا برحمتك يا رب. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.